पृष्ठ संख्या 9 अनुवादक की ओर से आज जगत 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। सारी दुनिया में स्त्री पुरुष समानता का ढिंढोरा पिटवाया जा रहा है। पहला विधेयक संसद में लाकर एक तरह से यह साबित किया गया है कि पुरुष महिलाओं के प्रति कितने उदार हैं। क्या यह सही है? घरों में आज भी पुरुषाधिकार का वर्चस्व दिखाई देता है। स्त्री सुशिक्षित नौकरी पेशा हो या गृहिणी, उस पर अधिकार जमाने का कार्य पुरुषों द्वारा आज भी हो रहा है। कहीं वह दहेज के लिए जलाई जा रही है तो कहीं पुरुष प्रेम को अस्वीकारने के लिए भरे रास्ते पर उसका खून किया जा रहा है। मृत्यु तो स्त्री की होती है, कभी कोई पुरुष स्त्री द्वारा जलाया गया हो ऐसा सुनने को नहीं मिलता, फिर भी सारे दोष स्त्री सौंदर्य को दिए जाते हैं। आज की नारी सुशिक्षित हो कर पुरुषों की बराबरी कर रही है। जो कार्य पुरुष करता आया है वह आज नारी भी आसानी से आत्मविश्वास के साथ कर रही है। बच्चों को सुसंस्कृत करने की जिम्मेदारी भी उसकी है, फिर भी समाज में उसका स्थान गौण ही है। पुरुष प्रधान संस्कृति ने स्त्री को आज भी हीन ही समझा है। पृष्ठ संख्या 10 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा के बारे में जो क्रांति हुई या स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर जो लेखन हुआ है उसमें लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख और महात्मा फूले का नाम अग्रणी है। लेकिन किसी स्त्री द्वारा ही स्त्रियों की स्थिति पर लेखन या भाषण, और वह भी 19वीं शताब्दी में, अवश्य ही विशेष कहा जा सकता है। 1882 में ताराबाई शिंदे ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर स्त्री पुरुष तुलना नामक ओजस्वी पुस्तिका लिखी। इस पुस्तक में ताराबाई ने स्त्री पुरुषों के गुण अवगुणों की चर्चा की है। सृष्टि निर्माता ने स्त्री और पुरुष का निर्माण किया एक अनुपम कृति के रूप में, फिर अवगुणों का सेहरा स्त्रियों के माथे बांध कर पुरुष धवल मस्तक घूमता है, उसमें दुर्गुण होते हैं कि नहीं, अथवा स्त्री का जो आचरण रहता है उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसकी स्पष्ट चर्चा इस पुस्तिका में हुई है। ताराबाई को अपने देश बांधवों के प्रति अभिमान है। किसी विशेष जाति का विचार उन्होंने यहाँ नहीं किया है, केवल उसकी स्वजात कल्याणार्थ जूझना। स्त्री और पुरुष में तुलना हो और सारे जग में स्त्री की स्थिति पर विचार हो, उसको समानता मिले, यही गहरी भावना उसके लेखन की प्रेरणा है। भारत में कुछ गिने चुने सुधारक जब स्त्री के प्रति आदर का भाव करते थे और अन्य समाज नारी को सुखता की दृष्टि से ही देखता था, तब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर लेखन करना और उसे समाज के सामने प्रस्तुत कर देना साहस और श्रेष्ठता का लक्षण है। इस पुस्तिका में ताराबाई शिंदे उस काल के तीन विषयों को प्रस्तुत करती हैं। पहला, विधवाओं की दयनीय स्थिति और उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति। दूसरा, पुरुष प्रधान संस्कृति में विवाहित स्त्री का पुरुष द्वारा शोषण। और तीसरा, पुरुष के दुर्गुण। लेखिका ने उदाहरणों के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि नारी ने जो अवगुण गिनाए जाते हैं वही पुरुषों में भरे होते हैं, लेकिन उनका परिणाम केवल स्त्री को उनके स्त्री जन्म के कारण भुगतना पड़ता है। पृष्ठ संख्या 11 स्त्री पुरुषों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण, लेखिका मान्य करती हैं। परंतु नारी को समान स्थान न देकर उसकी जो उपेक्षा की जा रही है उससे लेखिका संतप्त हैं। निराधार शोषित अपमानित स्त्री के प्रति ताराबाई आस्था रखती हैं। पुरुषों के दुर्गुण बताने के लिए वे रामायण, महाभारत, पुराण कथा, पांडव प्रताप, राम विजय और तत्कालीन लेखकों आदि का आवश्यकता अनुसार जिक्र करती है। शास्त्रों पर आधारित रूढ़िवादी परंपराएं कितनी गलत हैं यह वे तर्कसम्मत ढंग से सामने रखती हैं। 19वीं सदी के उस काल में एक स्त्री द्वारा इस योजना के विचार प्रकट करना एक साहसिक घटना थी। उस काल की सामाजिक परिस्थिति के सूक्ष्म निरीक्षण एवं स्वानुभवों के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। मराठी साहित्य में भी इस पुस्तक की पहचान 1975 तक किसी ने नहीं की। सबसे पहले श्री मालसे जी ने इसे 1975 में प्रकाशित किया और तत्कालीन स्त्री के विचारों को, जो अपने काल में आधुनिक नारी का सपना देख रही थी, इस आधुनिक समाज के सामने प्रस्तुत किया। परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद महसूस होता है कि इस आधुनिक कहे जाने वाले समाज का आंतरिक स्तर आज भी वही है जो ताराबाई के समय था। ताराबाई ने 1882 में स्त्री पुरुष समानता का जो सपना देखा था, वह आज 100 से भी ज़्यादा बरस बीत जाने के बाद भी सत्य के रूप में नहीं उतर पाया है। ताराबाई शिंदे लिखित इस पुस्तिका की भाषा 19वीं सदी की है, जबकि आधुनिक मराठी भाषा का रूप उसने पूरी तरह नहीं अपनाया था। इसलिए लेखिका ने छिटानी चौकी, खब्बून, तल तलून आदि शब्दों जैसे बहुविध तत्कालीन प्रचलित मराठी शब्दों का उपयोग किया है। पृष्ठ संख्या 12। इन शब्दों का हिंदी में अनुवाद थोड़ा कठिन कार्य बन जाता है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी में मराठी के इस प्रकार के सख्त शब्द नहीं हैं। अनुवादक के लिए जरूरी है कि वह हिंदी भाषा की मार्दवता बनाए रखे और साथ ही साथ लेखिका का मनोभाव पाठक तक पहुँचाए। कंठी, ठूसी आदि तत्कालीन गहनों के नाम हिंदी भाषा में उपलब्ध ही नहीं हैं, क्योंकि इस प्रकार के गहने या पहनावे केवल महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। अतः अनुवाद के लिए इनके प्रतिशब्द ढूंढना एक समस्या रही है। कभी-कभी ऐसे मराठी शब्दों का अनुवाद में पुनः उपयोग किया गया है ताकि लेखिका के विचारों की धारा बरकरार रहे, उसका कहीं खंडन न हो। पाठक और एक बात समझने की कृपा करें, 1882 में हिंदुस्तान में सभी स्तरों पर काफ़ी उथल-पुथल मच रही थी। समाज के सारे स्तरों में परिवर्तन हो रहा था। अंग्रेजों द्वारा मिलने वाली शिक्षा ने सुशिक्षित समाज के लिए बाहरी जगत के बहुविध आयाम खोल दिए थे, जिनका परिणाम हिंदुस्तानियों की जीवन शैली में धीरे धीरे दृष्टिगोचर हो रहा था। शिक्षा के प्रांत में बंगाल और महाराष्ट्र काफ़ी प्रगति कर रहे थे। सनातन धर्म के विरुद्ध पहली आवाज़ इन्हीं प्रांतों में आई थी। सर्वप्रथम इन्हीं प्रांतों में नारी शिक्षा का महत्व समझा गया और यही कारण है कि ताराबाई शिंदे जैसी अनेक नारियां अपने विचार समाज के सामने ला रही थीं। नारी मुक्ति की यह शुरुआत थी। परंतु ऐसे लेखन तत्कालीन भाषा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। इसमें दिखाई देने वाले शब्दों एवं वाक्यों की पुनरावृत्ति आज के पाठक के लिए निरर्थक और क्लिष्ट जान पड़ती है। इसलिए अनुवाद करते समय ऐसी पुनरावृत्ति टालने के अधिकतर प्रयास किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 13। महाराष्ट्र के नारी रत्नों में से एक ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष समानता जैसे आज के बहुचर्चित विषय पर 1882 में लिखे गए इस निबंध को जागृत हिंदी पाठकों के सामने लाने का निमित्त बनते हुए मुझे हर्ष है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी और जिस किसी से भी मुझे इस काम में मदद मिली है उनकी मैं शत शत आभारी हूँ। जूई पालेकर।